اپنے ضمیر کے مطابق اپنے کانسٹیٹیوئنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرے جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے بھیجا ہے، جن کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، ان کے حق میں کیا بہتر ہے، میرے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، میں اس کے حق میں ووٹ دے سکتا ہوں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی غلط کہہ رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، ووٹ میں کسی طرف بھی دے سکتا ہوں. یہ ٹرو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے. انفارچونیٹلی دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہو رہا. اینڈ آئی تھنک جو میں نے کہا نا کہ میں اس پہ بڑا پازیٹو فیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس نہیں ہوئی. بہت اچھا ہوا، نہیں ہونی چاہیے تھی. جب تک ایک چیز ٹیبل نہیں ہوتی، لوگوں میں ڈسکشن نہیں ہوتی، پبلک ریپرزینٹیٹیوز اس پہ ووٹ نہیں کرتے. ہاں، کیا عدلیہ میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ایک ملک جس کی عدلیہ 39 نمبر پہ ہے، فور شور ہونی چاہیے. وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ یقیناً مل بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، اور جو بھی جو سمجھتا ہے کہ جی جو جس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوگا سب کا، وہ کر دینا چاہیے.
بہت شکریہ. بلکہ ایک امینڈمنٹ یہ بھی ہونی چاہیے کہ جیسے نیب کا چیئرمین جنرل لگ سکتا ہے، اس لیے عدلیہ کا چیف جسٹس بھی جنرل لگ سکتا ہے. ایک امینڈمنٹ
دیکھیں، اگر سارے مانتے ہیں، اگر پاکستان کی 2/3
میجورٹی فوجی جنرل بھی، دیکھو جی شوگر مل تسی لے لئی، آٹے دی ملاں تسی لے لیاں، باقی تو ہن تسی اپنا جج جڑا ہے نا، اپنا ایک جنرل جڑا ہے، نوکری بھی لگ جائے گی تو چنگا سو کچھ کام کم بھی ہو جائے گا.
چار دن رہ لے
نہیں نہیں وہ پھر وہ عدالت چ بیٹھے گا، کالا کوٹ پا کے بیٹھے.
ہن بھی کالا کوٹ ہی پا کے بندے نے، کیڑے چٹے کوٹ پا کے بندے.
آشر عزیز صاحب، سر آپ کو بہت، آج آپ نے مجھے شروع میں 15 منٹ بہت ستایا، میں بہت ناراض ہوں آپ سے.
سوری، میں نے کیا کیا؟
بہت ستایا ہے مجھے اسی بمبل بوزے میں ڈال کے رکھی رکھا.
نہیں دیکھیے، آپ ایک سینٹینس میں دو باتیں کرتی ہیں، میں کیسے مان لوں.
آشر عزیز صاحب کو بہت شکریہ شامل ہوتے ہیں. آف کورس مختلف لوگوں کی مختلف آرا ہے. میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جو ہمارے، مجھے پتا ہے آپ سارے کے سارے بڑے ہیں، مگر یہ دنیا جس سمت میں جا رہی ہے، ہر بیٹا سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ پتا، باپ کو نہیں پتا. اشر عظیم جن پوزیشن کے اوپر رہے ہیں، پاکستان کے جن علاقوں کو دیکھا ہے، ہم بھی صرف اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کی بات چیت کرائی جائے، اور جن لوگوں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے ان کو اکنالج ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ، ابھی دیجیے گا اجازت. اشر عظیم صاحب کا ایک بار پھر سے شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو پھر آپ کی ان سے ملاقات کراؤں گی. حالانکہ یہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں، مگر کر دو گے. اجازت دیجیے اشر بھائی، خدا حافظ. تھینک یو.
تھینک یو ارفا جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو.
گاڈ بلیس یو. اسٹے ٹیونڈ. شازیہ جی اینڈ عامر ول بی ہیئر فار دی نیوز ان ڈیٹیل. اسٹے ٹیونڈ پلیز.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM Youngstown Toronto.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا، ودیا کوالٹی والا، سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ، کیونکہ بیڈ روم سیٹ، سوفا سیٹ، میٹریسز، ڈائننگ ٹیبل، ڈیکوریٹو آئٹمز، گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائز تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 کینیڈی روڈ، برامٹن. 9058747171.
اس مہینے میری سیونگ $400 ہوئی ہے.
میری سیونگ $350.
میری سیونگ صرف $100.
اور میری سیونگ سب سے زیادہ ہوئی ہے، میں نے سیو کیے ہیں $1,775.
کیا چمتکار کیا، مجھے بھی گر سکھاؤ نا.
بھائی بات سادہ سی ہے، ہمارے پاس 2 گاڑیاں اور 1 گھر ہے، اور ان سب کی انشورنس ملا کر میں نے زبردست سیونگ کی ہے، اور یہ جادو کیا ہے آل اسٹیٹ پکرنگ ایجنسی کے راجا پاشا نے. آپ بھی اپنی گاڑی اور گھر کے انشورنس میں خوب سیونگ کر سکتے ہیں. ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی. آل اسٹیٹ پکرنگ ایجنسی کے راجا پاشا. 6472903773.
ساڈے کول یوجنا ہے جو کہ اونٹیریو نو جوڑ رہی ہے. रोजाना आवाजाही नु घटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार. एही सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको. ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो. इस दी अदायगी ontario सरकार वल्लों कीती गई है.
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी, क्विक ट्रक लियो 519-622-0660, quicktruckcube.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ए संदेश जरा ध्यान नाल सुनो। गवर्नमेंट ग्रांट बच्चों अते परिवारों वास्ते उपलब्ध है। अगर तुहाडी इनकम $60,000 तो घट है ते तुहाडे बच्चे 12 साल तो घट उम्र दे हन तां तुहानू गवर्नमेंट तो $12,000 तो लैके $60,000 तक दी ग्रांट मिल सकदी है। ए पैसा तुहाडे अकाउंट विच 3 हफ्तियां दे अंदर अंदर आ सकदा है। ए गवर्नमेंट ग्रांट सर्विस ओंटारियो, अल्बर्टा अते BC विच उपलब्ध है। होर जानकारी लई शावेज दे नाल 647-769-0241, 647-769-0241।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाज़िया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ऑन्टारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाज़िया रहमान 905-872-1100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, PR रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। kanem solutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
ग्रिल इन द हार्ट मिसेस सागा में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। ग्रिल इन द हार्ट।
हमारा मंसूबा ऑन्टेरियो को कनेक्ट कर रहा है। हम रोजाना के सफर को कम करने के लिए नई सड़कों और हाईवेज की तामीर कर रहे हैं और बढ़ते हुए इलाकों को मुंसलिक करने के लिए अवामी ट्रांसिट को वसत दे रहे हैं ताकि आपका सफर तेज, महफूज और आसान हो। मजीद मालूमात ontario.ca/builds पर मौजूद हैं। इसकी अदायगी ऑन्टेरियो की हुकूमत की जानिब से की गई है।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगु आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
Messages and chit chat.
वेलकम बैक तमाम सामेंगे जो हमें 770 एम डायल पर सुन रहे हैं प्रोग्राम साजो आवाज। और अब आ गए हैं आपके दोस्त और होस्ट आमिर अहमद और गर्मा गर्म खट्टी मीठी खबरें लेके। शाजिया मलिक साहिबा भी स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं। जनाब अब से लेकर तकरीबन 7:30 बजे तक आपका और हमारा साथ 770 एम डायल और ई आवाज टीवी पर रहेगा। अगर आप कहीं पथरीला ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां गड्ढे ज्यादा हैं और पथरीला रास्ता है, कच्चे का इलाका है और आपको सही रेडियो सुनाई नहीं दे रहा, तो आप एक नंबर डायल कीजिए 6478724900। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com, यहां भी आप हमारे रेडियो सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम ही एडवर्टाइजर्स के नंबर आपको हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल ई आवाज टीवी एंड रेडियो, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद भी आता है तो उसको शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। हमारा टेलीविजन ई आवाज टीवी तमाम ही आईपीटीवी बॉक्सेस पर आप इसको देख सकते हैं पाकिस्तानी या उर्दू कैटेगरी में। चले जनाब अभी आपने जो है वो सियासी तबसरा सुन लिया, अब सियासी तबसरे की जो है वो खबरें लेकर शाजिया मलिक साहिबा अपनी स्नैपचैट से फ्री हो गई हैं, तो अब इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं
WS में? ठीक हूँ,
थैंक यू। आप बड़ा मतलब क्या गम है जिसको मुस्कुरा रहे हो?
बस वही है ना, ये तुम इतना जो मस्क करा रहे हो बस, अब तुम आगे समझ गए हो तो बस ये इसीलिए मस्क करा रहे हैं।
मैं तो समझा आज पता नहीं क्या कुछ चार और धमाके एक्स्ट्रा हो गए होंगे जिसपे आप, क्योंकि धमाके होते हैं तो आपकी चांदी होती है ना। अच्छा, हर एक का एक काम है, अब आदमी मरेंगे तो बेचारा कवर करने वाला।
रुको रुको, धमाके होते हैं तो आपकी चांदी होती है, मतलब तुम ये बताने की कोशिश कर रही हो कि मैं लोगों को टेररिस्ट सप्लाई कर रही हूँ?
नहीं नहीं नहीं,
हाँ या ये बम सप्लाई कर रही
हूँ? हर एक का कारोबार लगा हुआ।
हाँ तो मैं कारोबार ये कर रही
हूँ। अब देखे, अब सोचे कैसी जो बेचारा कवर खोदने वाला आदमी है वो क्या दुआ करता होगा अल्लाह से, मुझे बताएं।
हाँ, मेरे पास ज्यादा काम है,
है?
हाँ।
तो इंसान मरेगा तो वहां जाएगा।
हाँ।
तो अगर आप ऐसे कहो तो यार तू मेरे मरने की दुआ कर रहा है,
हाँ।
है? हाँ। वो दुआ करता है। हाँ। अल्लाह तू मुझे रिस्क दे, काम दे, उसका हाँ। काम कबर खोदने का है। हाँ। हो गया। इस तरह के अक्सर जो है हमारे एडवर्टाइजर्स भी हाँ। अक्सर आते हैं हमारे यहाँ, साथ होती है, नाम लेता हूँ, चुप करी साहिबा, वो एक्सीडेंट से डील करती है, तो एक्सीडेंट होंगे तो उनका काम होगा। तो इसी तरीके से दुनिया भर में इंतजार फैलेगा, बम धमाके होंगे। ट्रूडो साहब ने कह दिया, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आई विल स्लैप यू, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, गर्मा गर्मी हो गई है उनके साथ। आई नो, मैं तो एज इन क्रिएट कर रहा हूँ माहौल,
यानी कि तुम मसाला डाल रहे हो।
मसाला डाल रहा हूँ। और अभी जैसे आशिर रजीम साहब और आरफा मुजफ्फर साहब बातें कर रही थी कि भी वो जो एक तरमीमी पता नहीं कितनी 52 है 53 है कितनी है वो लीक हो गई, तो वो लीक हो गई एक्चुअल में है उसकी दरमियान की खबरें ढूंढने के लिए मसाला चाहिए, तो आपका काम
जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो। हम तो सिर्फ फैक्ट देते हैं, मसाले तुम बनाते हो।
देखिए ये
तुम मसाले डालते हो,
क्या फैक्ट है आप मुझे बताएं? कोई फैक्ट फैक्ट नहीं होता,
पता किसी को नहीं होता। फैक्ट ये है कि ये झूठ है।
अच्छा मजे की बात क्या होगी, जैसे अब मैं आपको फैक्ट बताऊं।
हाँ।
बड़े मजेदार, आज मैं सुबह से बहुत मुस्कुरा रहा
हूं। गंदे बच्चे हो तो बहुत गंदे बच्चे।
तफरी आज मैं सुबह से मैं देख रहा था।
हाँ।
यार अगर बैंक ऑफ कनाडा सुबह सुबह उठे, ये टिम मैकेलन साहब,
हाँ।
एक दिन उठे और वो कहते हैं जी कॉफी वॉफी पी ली उन्होंने, उन्होंने कहा जी आज जो है ना वो कह दो कि 2% पे आ गई इन्फ्लेशन।
हाँ। वैसे उनका नाम जो है ना
टिम मैकेलन,
टिफ
मैकेलन,
मैकेलम
मैकेलन, चले वो आप खुद ही समझ जाए, गवर्नर तो है ना यहाँ के जो बैंक ऑफ कनाडा के, ऐसा समझते हैं। आज वो उठे उन्होंने कहा जी भाइयों बहनों जो इन्फ्लेशन है वो 2 पे आ गई है।
अच्छा
अब मुझे एक बात बताएं, उन्होंने तो कह दिया 2 पे आ गई है, क्या 2 पे आ गई है? चीजें वैसी सस्ती हो गई जो 2020 पर 21 पे खड़ी हुई थी,
गैस लेकिन जो पिछले 3-4 साल में बहुत महंगाई थी ना उससे कम हो जाएंगी ये, दैट्स व्हाट
उन्होंने कहा। हो गई आज इन्फ्लेशन 2.0 वर्जन हो गया।
हाँ जी, लेकिन अब ये नहीं हो सकता ना कि तुम्हारे दादा या मेरे दादाजी जो 54 का आटा लेकर आते थे बोरी पूरी भर के।
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्री कोविड, यानी आप 2020 और 2021 में जो हालात थे वो आज वो कहते हैं जी वो तो बराबर हो गया, इन्फ्लेशन हमने ठंडी कर दी है।
लेकिन अब
जो बातें आप कर दी
वो नहीं नहीं उनकी बात ठीक है, वो कहते हैं जी उस चीज पे लेवल पे आ गया। अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना
वो क्या करेगा,
उसका ग्रीड जो है उसको चीजों की कीमतें कम करने देगा या नहीं, दैट इज अनदर क्वेश्चन।
अच्छा, तो इनका तराजू अलग है और कॉर्पोरेट का तराजू अलग है।
वो कहेंगे कि चीजें सस्ती अब उस लेवल पे होनी चाहिए और आएंगी, ठीक है आएंगी, वो कहते हैं आएंगी।
तो कहते हो गया आज?
हाँ नहीं नहीं उन्होंने कहा आएंगी राइट उस लेवल पे, कॉरपोरेट जिसको कि आदत हो गई है 10 रुपए कमाने की,
हाँ, वो कैसे 2020
का जो है वो 6-7-8 कैसे करेगा, वो नहीं करेगा ना।
उसका मतलब
तो
नहीं,
ये कॉरपोरेट लस्ट जो होती है ना, ये जरूरी नहीं है कि जो आप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं
उसको
वो उसको इम्प्लीमेंट भी करें।
बात ये हो गई कि भाईजान डबल रोटी की फैक्ट्री जो है वो गवर्नर साहब की तो है नहीं, वो किसी कॉरपोरेट की है। रोटी बनाने की कंपनी जो है वो, या दूध बेचने वाली कंपनी जो है वो तो आपको उसी रेट पर दे रही है। आज कल चले जाइएगा सुबह डबल रोटी लेने के लिए, या कोई रोटी लेने, दूध लेने के लिए चले जाएं किसी भी नीले पीले स्टोर में, तो क्या आपको जाके वहां बोलेंगे कि भाई
इफेक्ट जो है ना वो हौले हौले होता है? उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह नहीं, उसकी वजह मिसाल के तौर पे चीजें बहुत हाई थी, कीमतें बहुत हाई थी, ठीक है, यानी कि ये पेन जो था ये
$2 का था,
नहीं ये जैसे अब महंगाई चल रही है, मैं कह रही हूँ ये हमने ऑलरेडी 10 का बेचा हुआ है,
ठीक है,
तो हमने इस डर से कि ये अब 12 का ना हो जाए, हमने चाइना से ऑलरेडी 50 लाख पेन मंगवा के रख लिया है। बैंक ऑफ कनाडा ने कह दिया कि चीजें तो 10 साल पुराने पे चली गई हैं, लेकिन ये जिसकी कीमत ऑलरेडी मैं $8 दे चुका हूं और अब मैं 10 का बांट रहा हूं, मुझे कुछ टाइम लगेगा उसको 4 या 5 लाने पे, इसलिए क्योंकि मेरे स्टॉक में। इसी तरह जो डबल रोटी बना रहा है ना, उसने गंदुम खरीद के रखी हुई है, कितने मेट्रिक टन,
तो अभी तो कितने साल लग जाएंगे?
साल नहीं लग जाएंगे, कुछ अरसा लग जाएगा ना, कि कितना मेट्रिक टन उसने अब गंदुम रखा हुआ है, ठीक है, उसने हाई रेट पे लिया है। वो ये नहीं करेगा कि जैसे ही आपका इन्फ्लेशन 2 पे आए एकदम से वो बोलेगा जी ब्रेड आज से 2 रुपए की है, नो, उसने जो अपनी प्राइस दी हुई है ना वो उसको रिकूप करेगा पहले,
ठीक हो गया,
ठीक है, उसके बाद हौले हौले, क्योंकि अब उसकी चीजें सस्ती आने लगेंगी, जब सस्ती आने लगेंगी तो ये नहीं होता कि एक सेकंड में, एक महीने में, 6-7-8 months लगेंगे।
सस्ती कैसे आने लगेंगी, सवाल नंबर 1 है आपके साथ मेरा, तो सस्ती कैसे आ जाएंगी? आज जो है वो, आज भी आप डॉलर देख लें 73 समथिंग जो है वो हम ट्रेड कर रहे हैं,
तो वो नहीं आएंगी तो चीजें नीचे नहीं आएंगी।
तो डॉलर तो आपका 77 या 78 नहीं हो गया, या हो जाएगा अगले,
हो जाएगा ना कुछ अरसे में, फिर ऐसे वही मैं कह रही हूँ ना, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है ना, ये एक सेकंड में नहीं होता, ये हौले 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 होता है।
जैसे कि हम तो एक सेकंड में हो जाती है
महंगाई, एक सेकंड में इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने तो ये पेन जो था ये $2 का लिया था, जैसे ही प्राइसेस ऊपर गई आपने कहा ये तो मौका है मेरा प्रॉफिट कमाने का, $10 का करो इसको, खरीदा तो आपने 2 का था, आप उसको 10 में बेचने लगे हैं, लेकिन अगर जब आपने महंगी चीज ली है और चीजें सस्ती हुई हैं तो आप उसको सस्ता नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी महंगा ले चुके हैं। तो
ये सब वो कहते हैं कि कान से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें,
नहीं नहीं, दिल का होल साइंस,
सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, मुझे जो लग रहा है अभी हालात, सिर्फ इनको जो डर लग गया है जिससे ये पूरे कनाडा की जो है, मुझे लगता है कि
वाट लगेगी,
कहते हैं ना कि इनके जो खून की बोतलें पूरे कनाडा में, वो लगता है कि सिर्फ रियल स्टेट है, और इसको बचाने के लिए इन्होंने पहले तो बड़ा जोर लगा लिया, अब इनको ख्याल आया कि जनाब ये जोर जो है उल्टा पड़ रहा है, अब मसले मसाइल जो है वो खड़े हो रहे हैं।
ये सिर्फ 2 इंडस्ट्रियों को बचा रहे हैं, एक ऑटो इंडस्ट्री को और एक रियल एस्टेट की, दैट्स इट, और सारी इंडस्ट्रियां भाड़ में जाएं, हम जैसे मैं
रियल एस्टेट में मेरा एक पॉइंट है इस पर, फिर हम आपकी न्यूज शुरू कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इन्होंने कहा कि 30 ईयर्स की जो मॉर्गेज का टाइम इन्होंने दे दिया है, एक अच्छी बात है, ठीक है, और दूसरा फिर इन्होंने जो है वो कैप भी खत्म किया 1 मिलियन से 1.5 मिलियन पर अब आप ले गए 20% से डाउन कम पर लेने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए, कैनेडियंस जो भी सोचने वाले थिंक टैंक हैं, कि आप क्यों नहीं आप यूएस की तरह जो है मॉर्गेज सिस्टम यहां कनाडा में लेकर आते हैं। आपको मालूम है यूएस में मॉर्गेज सिस्टम क्या है? अगर आज मैं कोई घर खरीदने जा रहा हूं, वॉट एवर जो भी वहां की प्राइस है, $3 लाख का यूएसडी का घर या $4 लाख का या सुपर का, आज जो भी उसकी रेट चल रहा है जिसमें मैं खरीदने जा रहा हूं, उसको मैं नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए भी लॉक कर सकता हूं। यहां तो आपको मैक्सिमम 5 ईयर से ऊपर करने ही नहीं देते।
थोड़ी सी एमोर्टाइजेशन इसको बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन में थोड़ा सा उन्होंने जो है फ्लेक्सिबिलिटी,
वो समझ गया, वो 30 साल के लिए तो जाएगा, लेकिन जो मॉर्गेज का टाइम पीरियड है, मैक्सिमम रिन्यूअल टाइम जिसको कहते हैं, वो 5 ईयर से ऊपर नहीं है,
नहीं है,
मैक्सिमम आप जा सकते थे, आज जो आपने मॉर्गेज लिए वो सिर्फ आपको 5 साल के बाद आपको दोबारा रिन्यू, इधर फिक्स्ड और इधर वेरिएबल, नो मैटर व्हाट आपको रिन्यूअल कराना है, जबकि अमेरिका में जो भी आपने करा दिया है वहां फायदा, वहां होता क्या है लोगों को, वहां होता है जैसे फर्ज के लिए आज मैंने 5% पे मॉर्गेज ले ली 30 साल के लिए, मैंने कहा मैं मेरी सेटिंग बनती है, मुझे कैलकुलेशन समझ आ गई 30 साल के लिए उसको लॉक करें, फिर जैसे ही अगर खुदा ना खासा रेट कम हो जाता है तो वो क्या करते हैं वहां पर उसको रिफाइनेंस करा लेते हैं, लेकिन उनका जो एक सिस्टम होता है वो 30 ईयर्स के लिए लॉक हो गया। यहाँ जो है वो पैसे बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है मुझे ऐसा।
मार्केट भी छोटी है ना अमेरिका के, यानी कि अगर यहाँ पे 2 लोग हैं तो अमेरिका में 100 लोग हैं, यू नो, तो मार्केट का भी हिसाब होता है। ये बात वही है जो हम हमेशा करते हैं, यार इंडियन तो मैं हर जगह बैठे नजर आते हैं शायद बहुत काबिल है। नहीं, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, पॉपुलेशन बेतहाशा है। यानी एक बंदा पाकिस्तान का और 100 बंदे इंडिया का, तो जाहिर है जो 100 बंदे जहां पे हैं वो हर जगह ही नजर आएंगे ना, वो एक कहां पे नजर आएगा, यू नो, वो तो एक ही जगह पे ना। तो इट इज ऑल द पॉपुलेशन मिक्स ऑल्सो। यहां पे हमने कोई एक दफा नहीं, को करोड़ दफा कह चुके हैं कि इस मुल्क में टोटल कराची जितनी पॉपुलेशन है उस मुल्क में कितने ही कराची बस रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो जैसे जैसे, इसीलिए वहां पे आप देखो टैक्सेस भी कम है, चीजें भी सस्ती हैं और सब कुछ वहां पे जो है बहुत सस्ता है। आप जाके वहां पे ग्रोसरी करें, इतनी आपको सस्ती चीजें मिलती हैं, और वो जैसे जो इनके बिग बॉक्स स्टोर्स हैं खासतौर पे, उस पर तो आप बल्क में उठा लें चीजें, इतना आपको सस्ता पड़ता है। और वहां पे अक्सर लोगों को मैंने देखा है नेबर्स जो है वो ऐसे ही करते हैं, जो है वो जो वो 4-5 फैमिलियां जो होती हैं वो कटी, कोई उनमें से एक लेडी जो है कहती है मैं जाके ले आऊंगी, और फिर वो जी वो बैठ के वो ब्रेडें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट और दालें और चावल ऐसे कर रहे होते
हैं। वो जी कर लेते हैं, आपके जो वो 1 मिलियन मसला है वो ऐसे हल
होगा।
लेकिन अब आपका जाहिर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बैंक ऑफ कनाडा का है तो ये रहेंगे 0.50 बेसिस पर नीचे कर लेगा, तो आपके ऐसे हो जाएंगे 1 मिलियन, आप टेंशन ना
लें। हम
अपना
हाँ टाइम बड़ा तुमने जाया किया ना मेरा टाइम इतना प्रेशियस, ठीक है जी। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम आपको बताएं चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल के बारे में। 1400 लोगों का यहाँ पे फैसिलिटी है, तो आप उनको बुला सकते हैं। 32 रूम लग्जरी होटल है और बड़े जबरदस्त आप अपने छोटे बड़े इवेंट्स कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको कॉल करें 8647965-3823। और जनाब गवर्नमेंट के ग्रांट्स अगर आपको चाहिए, अगर आपका गम मेरा और आमिर वाला नहीं है, आपके बच्चे 12 साल के पास हैं, तो आप प्लीज जल्दी से ये अप्लाई करें। आपको 12,000 से 60,000 जो है, यानी शावेद से मैं पूछना चाहती हूँ, जिस वे साढ़े बच्चे वड्डे हुए तो तेन याद आया स्कीम कटन तो है भाई। तो अच्छा जी शावेद साहब को आप फोन कर लो, अगर आपके पास जो है 12 साल से कम बच्चे हैं, तो इनका नंबर है शावेज का 6477690241। एंड जनाब जो राजा बादशाह जी हैं बड़े प्यारे हैं, ढेर सारे लोगों के पैसे बचाते हैं, हालांकि जीशान के उन्होंने सिर्फ $100 बचाए हैं, लेकिन आमिर से प्यार बहुत दिखा है, 1775 आमिर के बचाए हैं। तो राजा बादशाह जी के पास जाएं, ऑल स्टेट में होते हैं, वो कहते हैं जी आओ सही मेरे को एक दफा है जी। तो इनका नंबर है 6472903773। ये है जी हमारे कुछ एडवर्टाइज। तो अब हम शुरू करते हैं जनाब अपनी खबरें। अच्छा जनाब ट्रूडो साहब के साथ हुई फिर से बेचारों के साथ बड़ी बुरी, ये जो थी लेसेल एमर्ड वर्डन की जो क्यूबेक में बड़ा लॉन्ग टाइम लिबरल सीट था मॉन्ट्रियल में, ये भी वो हारे और ब्लॉक क्यूबेकवा ने ये जीता। लेकिन ट्रूडो साहब ने इस हार के बाद कहा जी कि मैं फोकस्ड हूं जो है अपने काम के ऊपर। ये दूसरा बाय इलेक्शन था जो ये हारे थे, इससे पहले हमने आपको बताया था कि ट्रोनो सेंट पॉल्स में भी ये हार गए थे लिबरल पार्टी जो है। वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए और बहुत अच्छा होता अगर हम वर्जन की जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इसको हम संभाल सकते, लेकिन कोई बात नहीं है, हम बैठ के सोचेंगे इसके बारे में क्या गलत हमने किया क्या सही हुआ। लेकिन आई एम श्योर के कैनेडियंस जो है वो राइट चॉइस जो है बना रहे हैं, आने वाले दिनों में भी वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसी चॉइस बनाना चाहते हैं। मैं उन तमाम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिन्होंने के अपना नाम दिया था कंटेस्ट के लिए, और इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे हर पार्टी से, जिन्होंने के लोगों के साथ एंगेज किया और उनको कन्विंस किया कि हु इज द राइट कैंडिडेट। ब्लॉक की वैकवा ने जब यहां से विन किया तो उसके बाद आज जो है इनके जो लीडर हैं फ्रैंको ब्लांशे वो जो है मीडिया के साथ बात कर रहे थे और कुछ कुछ वो आइडिया दे ही रहे हैं, कुछ दिनों से भी वो दे रहे थे कि हो सकता है कि जो है वो कहें कि भई ये इलेक्शंस लाने चाहिए, क्योंकि क्यूबेक में उनकी जो है काफी स्ट्रांग होती जा रही है पोजीशन। इसके अलावा एनडीपी जो था वो बड़ा मुश्किलों से नैरोली वो जो है अपना ये स्ट्रांग होल्ड जो है ये इसका एल्मवुड ट्रांसकोना का ये बचा सका था। पीएम पॉलीएफ साहब जो है वो चाहते थे कि ये राइडिंग जो है इनके पास आ जाए, लेकिन ये नहीं आ सकी। आज ट्रूडो साहब की मुलाकातें जो है अपने कैबिनेट के साथ हुई हैं ओटावा में, और रिपोर्टर्स ने भी मिनिस्टर्स के साथ पूछा कि क्या आपको लगता है कि ट्रूडो साहब जो है आपको नेक्स्ट पॉलिटिकल जो साइकिल आने वाला है यानी कि जो पोल्स आने वाले हैं उनमें आपको जिता सकेंगे या नहीं। और इसके साथ साथ जो है आज बातचीत जो है क्वेश्चन पीरियड के बीच में सिंह साहब ने भी कुछ क्वेश्चन लिए, यानी कि जगमीत सिंह साहब ने, और ये बातचीत की। तो काफी पॉलिटिकल अपहीवल है मुल्क के अंदर, यहां पे भी कनाडा में भी काफी अपसेट्स हैं, तो लोग जो हैं अब इस के ऊपर सोच रहे हैं कि भई ये अब लिबरल्स कितने स्ट्रांग हैं कि नहीं। एक जो इंटरेस्टिंग खबर वो ये है कि अमीर ऑफ कतर जो हैं वो यहां पे आ रहे हैं ओटावा के अंदर विजिट के लिए। शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो है ये अपनी मुलाकातें करेंगे ट्रूडो साहब के साथ, एंड दिस इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप टू कनाडा अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। यानी कि ट्रूडो साहब का जो ऑफिस है उसने कहा है कि ये दोनों लीडर्स डिस्कस करेंगे सिचुएशन इन गाजा, अफगानिस्तान एंड यूक्रेन। आपको पता ही है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यूएस, कतर एंड इजिप्ट हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम कि जी गाजा के अंदर सीज फायर हो जाए और कोई ट्रूस हो जाए बिटवीन इसराइल एंड हमास। पीएमओ ने यह भी कहा कि ये लोग जो हैं दोनों कतर और कनाडा डिस्कस करेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रूडो साहब ने कहा जी कि हम दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं। लेकिन इस मौके पे शिमोन कॉफलर फॉगल जो कि प्रेसिडेंट और सीईओ हैं ऑफ सेंटर फॉर इसराइल एंड ज्यूइश अफेयर्स, उन्होंने कहा जी कि हम बड़े होपफुल हैं कि ट्रूडो साहब जिस वक्त अमीर साहब यहां पर आएंगे, अमीर ऑफ कतर, तो उनके साथ ये वो बात करेंगे कि ये जो हमास को सपोर्ट दे रहे हैं वो खत्म करें, क्योंकि हमास जो है वो फसाद की जड़ है और टू स्टेट सोल्यूशन जो है उसके बीच में मेजर बैरियर है। तो अब पाइजन ये तो आपका ख्याल है कि हमास जो है वो मेजर बैरियर है, उनका ख्याल है कि आपकी जो स्टेट है वो मेजर बैरियर है ना। तो ये अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जाहिर है यहां पे और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। स्टैट्स कनाडा की जो खबर आई है जी कि एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो बैंक ऑफ कनाडा का जो 2% का रेट जो वो कह रहे थे कि उसको टच करे अगस्त में वो टच की थी, विच वाज द लोएस्ट सिंस फरवरी 2021। रॉयटर्स ने के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने पहले भी एक दफा कहा था कि शायद इनका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कूल करेगा 2.1% में फ्रॉम 2.5% इन जुलाई, और उन्होंने कहा था कि इट विल रिमेन अनचेंज मंथली बेसिस। कनाडा का डॉलर जो है अलबत्ता वो वीक हुआ है, इट हैज डिप 0.2% टू कनेडियन 1.1361 टू यूएस डॉलर और 73.45 यूएस सेंट्स पे आ गया है। बैंक ऑफ कनाडा ने अभी तक जो है रो में 3 दफा पॉलिसी रेट्स कम किए हैं और ऑल टुगेदर 75 बेसिस पॉइंट्स कट किए हैं टू 7.25। अभी जो नेक्स्ट मंथ में इनकी अनाउंसमेंट आने वाली है उसमें अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद क्योंकि 2% को इन्फ्लेशन टच कर रही है तो 50 बेसिस पॉइंट्स जो है बैंक ऑफ कनाडा अपने ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स जो है वो नीचे लाएगा। लेकिन अब देखेंगे नेक्स्ट मंथ आएगा कि भाई सिचुएशन क्या है इकोनॉमी की, तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। आज पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम 11th डिवीजन उन्होंने कोई 5 गाड़ियां सीज की हैं एंड दे हैव लेड 270 हाईवे ट्रैफिक एक्ट चार्जेस। ये जो है ऑफिशियल्स इनको बुलाया गया था यहां पे मिसिसागा का जो रिजवे प्लाजा है जिसमें बेशुमार शिकायतें लोगों से आ रही थी जो रेजिडेंट्स थे इलाके के, वो कहते थे कि जी ये लोग यहां पे स्पीडिंग करते हैं, स्टंट ड्राइविंग करते हैं, स्ट्रीट रेसिंग करते हैं, जिससे कि इलाके के लोगों को बड़ी परेशानी थी। एनफोर्समेंट जो थी वो फिर स्ट्रेटेजिक एनफोर्समेंट जो थी वो इन्होंने होल्ड की थी पुलिस ने इन सारे एरियाज के अंदर, और ये सेकेंड वीकेंड है इन दिस मंथ के जिसके के अंदर इन्होंने ये किया। पुलिस रीजनल पील रीजनल पुलिस के जो एरियल सपोर्ट यूनिट है उन्होंने भी इनको जो है वो सपोर्ट दी थी। 22 लोगों को अरेस्ट किया है फॉर स्टंट ड्राइविंग और स्ट्रीट रेसिंग, और इसके अलावा एक चोरी की गाड़ी भी उन्होंने की है रिकवर और सस्पेंड किए हैं 4 लाइसेंसेज। इसके अलावा 6 क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो भी लगाए हैं इनके ऊपर। तो जाहिर है कि इन्होंने बड़ा ही लड़कों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ था जिससे शिकायतें गई थी पुलिस को बहुत सारी। अच्छा जनाब, एज इफ ऑलरेडी जो शटडाउन्स हैं वहां पे टोरंटो के अंदर वो काफी नहीं थे, तो आज न्यूज आई है कि गॉर्डनर एक्सप्रेस जो है वो शट डाउन रहेगा, क्योंकि जो है काफी सिग्निफिकेंट उसका हिस्सा इस वीकेंड के ऊपर, क्योंकि वहां पे 35-आवर क्लोजर ये जो अनाउंस किया है सिटी ने उसके ऊपर काम किया जाएगा रिहेबिलिटेशन का। ये जो शटडाउन है गार्डनर एक्सप्रेस पे वे पे ये शुरू होएगा फ्राइडे सितंबर 20th एट 11 PM और संडे 10 बजे तक ये रहेगा सितंबर 2022 तक। और वो कहते हैं जी कि ये इसके सेक्शंस जो हैं कोई कोई खोले जाएंगे फेजेस के अंदर, लेकिन ये जो बंद किया गया है फॉर मेंटेनेंस, लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, रोड क्रूज और इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो कहते हैं जी राउंड द क्लॉक काम करेंगे और रीसर्फिस करेंगे 3 लेन्स टू रिपेयर क्रैक्स पॉट होल्स और रिप्लेस करेंगे 1.4 किलोमीटर का जो गाइड रेल है उसको भी। रिपेयर जो है वो डेफरेंस स्ट्रीट ब्रिज पे भी की जाएंगी। सिटी ऑफ टोरंटो ने ड्राइवर्स को कहा है कि वो अपने अल्टरनेटिव प्लान्स बनाएं और अपना प्लान जो है ट्रेवल वो इन एडवांस करें और अगर पॉसिबल है तो पब्लिक ट्रांजिट ही यूज करें। तो ये जो है जनाब, आप सावधान रहें इस वीकेंड के ऊपर अगर आप डाउनटाउन टोरंटो जाना चाहते हैं। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जनाब लॉयड ऑस्टिन साहब, जिनकी के मुलाकातें अब इजरायली ऑफिशियल्स के साथ हो रही हैं, उन्होंने उनको कॉशन किया है कि भई ये जो इसराइल अब हिज़्बुल्लाह के साथ आपने जो लड़ाइयां शुरू कर दी हैं, इसका डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट होएगा इसराइल, लेबनान और सारे रीजन के ऊपर भी। ये बात कर रहे थे अपने काउंटर पार्ट योव गैलेंट के साथ कि ये जो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस हैं बिटवीन हिज़्बुल्लाह एंड इसराइल, ये अलॉन्ग लेबनान इसराइल बॉर्डर, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा जी कि हमारा गोल फॉर गाजा वॉर है कि हम इसको एक्सपैंड करें टू एनेबल इजरायलीज लिविंग इन एरियाज नियर लेबनान बॉर्डर, के वो अपने घर में वापस आ सकें, क्योंकि आपको पता ही है कि कांस्टेंट शेलिंग से दोनों तरफ ऑफ द बॉर्डर जो है, यहां पे इसराइल में भी और लेबनान में भी बॉर्डर एरिया से हजारों की तादाद में लोग यहां से मूव आउट कर गए हैं, क्योंकि कांस्टेंटली इसराइली फोर्सेज और हिज़्बुल्लाह के बीच जो है क्रॉस बॉर्डर फायर जो है वो हो रहा है। ऑस्टिन ने रीइन्फोर्स किया कि जी वैसे तो यूएस आपके साथ खड़ा रहेगा एंड यू हैव द राइट टू सेल्फ डिफेंड, लेकिन फिर भी उन्होंने इसराइल को एडवाइस किया कि भाई डिप्लोमेटिक टॉक्स जो हैं उनको एक चांस दें। इसराइल ने थ्रेटन किया है कि सदर्न लेबनान से पुश करेंगे ये हिज़्बुल्लाह को, और क्योंकि हिज़्बुल्लाह जो है वो कहते हैं जी हमारे पे कॉन्स्टेंटली मिसल अटैक्स कर रहा है। सीनियर व्हाइट हाउस एनवॉय जो है वो जो है इसराइल में पहुंचे हुए हैं फिर से, और वो फिर से कह रहे हैं कि जी ये जो यूएस बैक डील है सीज फायर की, इसके ऊपर आप अमल करें। इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब फिर से एक दफा मिडल ईस्ट में पहुंच गए हैं, इजिप्ट पहुंचे हैं आज। मैथ्यू मिलर ने जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टेंटली यूएस काम कर रहा है ताकि हॉस्टेजेस रिलीज किए जा सकें और पैलेस्टीनियंस की सफरिंग्स को खत्म किया जा सके और रीजनल जो सिक्योरिटी है उसको एनहैंस किया, उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। नेतन्याहू साहब ने पब्लिकली यूएस की ये डील जो है रिजेक्ट की है, और उन्होंने कहा जी कि ये आप जो बात कर रहे हैं कि ये नियर कंप्लीशन है, नियर कंप्लीशन है, हमने तो इसके ऊपर हाँ ही नहीं बोला है अभी तक, तो आप कैसे इसको ये इस तरह का सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि इजरायली मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो इजिप्ट गाजा बॉर्डर के ऊपर रहेगी, और भी ये दूसरे जो बॉर्डर एरियाज हैं जो लेबनान के साथ हैं वहां पे भी हम रहेंगे, और कोई अभी तक जो है इसराइल ने कोई फ्लेक्सिबिलिटी वॉर को रोकने की शो नहीं की है। रॉयटर्स की ये खबर है जी, और इसके मुताबिक हजारों ही हिज़्बुल्लाह के फाइटर्स जो हैं और मेडिक्स जो हैं वो हर्ट हुए हैं। ये जो पेजर्स ये लोग यूज करते हैं, आपको पता ना जो पेजर होता है जिसमें आप एक मैसेज करते हैं, पेज करते हैं एक मैसेज कम्युनिकेशन के लिए, ये यूज होता है, ये लेबनान के अंदर जो है एक्सप्लोड हुए हैं। अब इसका रीजन क्या है, ये एक्सप्लोड क्यों हुए हैं, इसके अंदर कोई खराबी थी या किसी ने इसको रिमोट कंट्रोल से किया है कि नुकसान पहुंचाना चाहते थे हिज़्बुल्लाह को, क्या चक्कर था, कुछ अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन इसके बीच में ईरान का जो मेहर न्यूज एजेंसी है उसने कहा है कि ईरानियन अम्बेसडर टू लेबनान जो है मुश्तबा अमानी, वो इस के अंदर जो है वो हर्ट हुए हैं। पेजर्स जो थे वो डेटोनेट करने शुरू कर दिए थे, और ये पेजर्स जो थे ये खरीदे थे इन्होंने हिज़्बुल्लाह ने, और अचानक से इन्होंने डेटोनेट होना शुरू कर दिया। एम्बुलेंसेस जो थी आज भागती हुई नजर आई लेबनान और बैरूत का, जो उनका जो कैपिटल है उसके अंदर, और जो माउंट लेबनान हॉस्पिटल है उसने कहा जी के तकरीबन 40 के करीब वुंडेड लोग यहां पे आए थे, उनके वुंड जो थे उनके फेस आईज लिम्स के ऊपर थे। ये एक्सप्लोजन जो है ये एक घंटे तक होते रहे, और वही जैसे मैंने आपको बताया कि पता नहीं चला कि इसका क्या माजरा है। हेल्थ वर्कर्स जो है लेबनान में उनको मना कर दिया गया कि बिल्कुल पेजर्स यूज ना करें। लेबनीज रेड क्रॉस जो है उसने कहा है कि 50 एम्बुलेंसेज एंड 300 इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ जो है उसको डिस्पैच किया गया असिस्टेंस के लिए। और ये जो है इसके बीच में आपको पता ही है कि हिज़्बुल्लाह और इसराइल की जो लड़ाइयां हैं वो कॉन्स्टेंटली चल रही हैं, और ये सारा कुछ जब आज हुआ है तो बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं लेबनान को वो बहुत सारी इंटरनेशनल जो थे फ्लायर्स थे उन्होंने सस्पेंड किए अपनी यहां पे तैयारी भेजने, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टेंटली एयर स्पेस जो है लेबनान की वो अफेक्टेड है। तो ये आज काफी फिर से जो है खबर अफसोस की थी। यूएई ने आज कुछ जिसको हमारे पंजाबी में कहते हैं ना थोड़ा जैसा दिखाया, वरना तो बस यूएई के अरब तो बस दबा दब पैसा कमाने पे लगे हुए हैं, कोई उनके राइट लेफ्ट सेंटर में मर रहा है, भूखा है, जो भी है, उनको कुछ उससे लेना देना नहीं है। अपने मुल्क में बस बिजनेस लाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपने आप को एक लिहाज से अच्छी है कि भाई अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर बना रहे हैं, लेकिन बहरहाल बिल्कुल सुमुन बुकमुन जैसे होते हैं ना, जिप लगा के बैठे हैं, कुछ उनको लेना देना नहीं आसपास के। आज जनाब यूएई की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है। यूएई ने कहा है जी कि हम जो ये जो यूएस के साथ जो इनकी मल्टी बिलियन डॉलर ये जो F-35 वॉर प्लेन्स की जो बातचीत थी अमेरिका के साथ, वो जो मर्जी कोई नवंबर के अंदर इलेक्ट होता है तो हम चाहते हैं कि ये टॉक्स तो रिज्यूम करें, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि इसको हम जोड़ेंगे नहीं इसराइल की एक बात के साथ। अच्छा जी, अब वो बात क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि यूएई जो है उसने ये कहा था कि हम परचेज करेंगे F-35। ट्रंप साहब की जो पहली टर्म थी उसमें, ट्रंप साहब के जो फाइनल डेज में, उसमें ये डील साइन की गई थी। अब वो कह रहे हैं जी कि अगर ट्रंप साहब जीते या कोई भी और जीता तो हम जो है वो ये जो है करेंगे, सस्पेंड करेंगे इन टॉक्स को अभी के लिए, और जो है हम इसके ऊपर देखेंगे कि अब इसको हमको आगे लेके कैसे जाना है। लेकिन जाहिर है कि इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि ये मल्टी बिलियन डॉलर जो थी, नहीं सॉरी, उन्होंने कहा कि हम सस्पेंड नहीं करेंगे टॉक्स क्योंकि ये मल्टी बिलियन डॉलर डील थी और हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो जो कोई भी अमरीका में आएगा हम उसके साथ बात करेंगे। अगर ये हुआ और यूएस ने ये अप्रूव किया F-35 वॉर प्लेन्स, तो यूएई इज गोइंग टू बी द सेकेंड मिडल ईस्टर्न कंट्री जो कि इसराइल के बाद इनको जो है F-35 को ऑपरेट कर सकेगा। यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियान, उन्होंने एक्स के ऊपर कहा जी कि जो है ये जो बातें सब कर रहे हैं कि यानी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज आ रही थी ना कि ये F-35 यूएई को ना दिया जाए जिस वक्त तक ये इसराइल का साथ ना दे, तो वो जरा क्लैरिफाई कर रहे थे इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि नतन्याहू साहब जो कह रहे हैं कि जी हम गाजा के अंदर अपना प्लान लेकर आ रहे हैं और जो है ये जो सारी थियोरीज आ रही हैं कि शायद अमेरिका इनके ऊपर जोर दे कि जी इसराइल का तुम साथ दो, उन्होंने कहा जी मैं बहुत सारी चीजें आज क्लैरिफाई करना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो नतन्याहू साहब ने कहा जी कि पूरे का पूरा गाजा का इलाका मुझे दो कि मैं उसको जो है देखूंगा और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पोर्ट और सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग, हम बिल्कुल इस सारे की सारी बात को रद्द करते हैं। और क्योंकि नतन्याहू साहब ने कहा था कि इस डील के अंदर यूएई, इजिप्ट, बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को और सऊदी अरेबिया जो है उसको भी इसमें किया जाएगा। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियान ने कहा जी कि बिल्कुल इसराइल की कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है ये सारी बातचीत करने के लिए और हम बिल्कुल इस प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम टू स्टेट जो है वो के ऊपर हम बिलीव करते हैं और जिस वक्त तक इसराइल अपनी ये प्रेजेंस गाजा स्ट्रिप से खत्म नहीं करेगा और ये जो है पैलेस्टीनियंस को हक नहीं देगा कि वो अपने लोगों के एस्पिरेशंस के मुताबिक अपने मुल्क का जो है निजाम वो चला सके, हम बिल्कुल इसराइल का साथ नहीं देंगे और हम बिल्कुल किसी चीज में इस चीज में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब ये जो नई गवर्नमेंट अमरीका में आएगी, अब इनके ऊपर क्या बोझ डाल सकती है, F-35 तैयारी दे सकती है, ये जो है चीजें बहुत ज्यादा जो है अब आप बोल सकते हैं कि डाउट में चली गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं अली खामनाए, उन्होंने जनाब आज बड़ा कमेंट दिया है और उन्होंने कहा जी कि मुसलमान जो हैं उनके ऊपर बड़े जुल्म ढाए जा रहे हैं गाजा में, म्यांमार में और इंडिया के अंदर। ये एक इवेंट हो रहा था जिसमें कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर बात की जा रही थी और उन्होंने कहा जी कि रसूल का हुक्म है कि जुल्म के खिलाफ जो है हम बात उठाएं और हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं हो सकते हैं जिस वक्त तक जो जुल्म मुसलमानों के साथ म्यांमार, गाजा और इंडिया और या किसी भी और जगह पे हो रहे हैं वहां पे हम उनके लिए आवाज ना उठाएं। और ये जो एनिमीज ऑफ इस्लाम है ये हमसे हमारी आइडेंटिटी जो है इस्लामिक उम्मा की वो छीनना चाहते हैं, लेकिन हमको इनडिफरेंट नहीं रहना चाहिए था। अब जब इन्होंने म्यांमार, गाजा और इंडिया का भी नाम लिया तो उसके ऊपर हिंदुस्तान जो है जाहिर है वो भड़क गया। हालांकि इंडिया के बड़े ट्रेड टाइज हैं और बड़ा सस्ता ऑयल लेता रहा है वो ईरान से। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने इस चीज को बड़ा कंडेम किया और उन्होंने कहा जी कि हम स्ट्रांगली डिप्लोर करते हैं इनके ये कॉमेंट्स, इनकी जो है ईरान की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया सिचुएशन जो है उसके ऊपर इन्होंने ये कॉमेंट्स दिए हैं। और ये जो भी कोई इंडिया की माइनॉरिटीज के ऊपर बात ईरान ने की है ये मिस इन्फॉर्मेशन और के ऊपर बेस्ड है और बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने ना सिर्फ ईरान को बल्कि तमाम वो मुल्क जो कि इंडिया की माइनॉरिटीज के साथ जो बैड ट्रीटमेंट हो रहा है या जैसा भी हो रहा है उसके ऊपर जो बात करना चाहते हैं उनको कहा है जी कि आप सबसे पहले अपना खुद का रिकॉर्ड देखो। आज उन्होंने ईरान को डायरेक्टली कहा कि ईरान अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स के ऊपर देखे और फिर इंडिया के ऊपर जो है वो एतराज करे। तो जनाब जो है वो چیزیں ہر جگہ ہی طرح گرما گرمی میں چل رہی ہیں جی بہن، یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ اچھا جناب، آج ایک بڑا مزے کا جو ہے ایک سروے آیا ہے جس میں کہ نہیں سوری ابھی سروے نہیں آیا، اسٹارٹنگ فرام 2025 اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں یو کے کو، تو آپ کو جو ہے بڑے چیلنجز آپ فیس کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ای یو ٹریولرز جو کہ ابھی تک ویزا فری ٹریول کرتے تھے، ان کو کافی پرابلمز آ سکتے ہیں. پرابلمز یعنی کہ کیا، ایک دو ایشوز اور چیلنجز آ سکتے ہیں. اس وقت کہ یورپین یونین کے جو سٹیزنز ہیں وہ بالکل ایڈیشنل فیز کے بغیر یا ویزا کے بغیر جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا اپریل 2025 میں، کیونکہ گورنمنٹ نے نیو ٹریول رولز ٹو انٹر یو کے جو ہے وہ لگا دیے ہیں. اکارڈنگ ٹو دس، جتنے بھی یورپین یونین کے ٹریولرز ہیں دے ول ہیو ٹو اوبٹین الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن ای ٹی اے، اور یہ پے کریں گے £10 کی ویور فی ٹو لیٹ دیم انٹر یو کے. یہ جو رول ہے یہ اپلائی نہیں کرے گا یو کے یا آئرش سٹیزنز کے اوپر، لیکن اس کے علاوہ اور سب پہ ہوئے گا. یہ جو لا ہے یہ نان ریفنڈیبل، یہ سوری جو فیس ہے یہ نان ریفنڈیبل ہوئے گی، اور جو بھی کوئی ایون بچے اور بیبیز جو بھی انٹر ہوئیں گے وہ بھی £10 پر پرسن جو ہے وہ پے کریں گے. اس وقت جو یہ فیس ہے یہ دیتے ہیں سٹیزنز آف بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای، اور جو ہے اب 2025 سے ہر کسی کے اوپر یہ اپلائی کرے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ہوں یو کے کی بھی حالت کافی پتلی ہے، تو ان پہے تو انہوں نے بڑھانے نا، کیونکہ لینڈ ہے تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کیسا کنٹری ہے یہ، ہے جی کوئین کا کنٹری کیسا ہے. اچھا جناب، یہ ہے انٹرسٹنگ رپورٹ جس کے بارے میں ابھی میں بات کر رہی تھی. یہ ایک سروے کیا ہے 10,000 سٹیز ان دا ورلڈ کا، جس میں کہ کنسیڈر کیا گیا ہے کہ 15 منٹ کے فاصلے کے اوپر کیا امینٹیز ہیں. یہ سٹڈی جو ہے یہ کی ہے جرنل آف نیچرل سٹیز نے، اور یہ ریسرچرز جو ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کتنا ڈسٹنس ہے لوگوں کا کہ وہ واک کر کے یا بائک کر کے اپنی اسینشل سروسز لائک پارک، سپر مارکیٹ، سکولز اور ہاسپٹلز جو ہے اس میں جا سکتے ہیں. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ اس کے اندر جو ہے نارتھ امریکن بالکل کنٹریز کے جو سٹیز ہیں وہ نہیں ہیں. انہوں نے سلیکٹ کیے تھے میجر 54 جو سٹیز تھے، اور جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو مڈ سائز بلکہ جو سٹیز ہیں دے آر ڈوئنگ ویل، جیسے کہ زیورک، ملان، کوپن ہیگن اینڈ ڈبلن. اس تمام ان سٹیز کے اندر جتنے بھی اسینشل سروسز ہیں یہ 15 منٹ کے فاصلے پہ ہیں، اینڈ 95% آف ریزیڈینٹس کو یہ تمام سہولتیں ہیں. ایٹ دا باٹم آف دس لسٹ از دا نارتھ امریکن سٹیز، جس کے اندر یہ بڑے بڑے سٹیز ہیں سین اینٹونیو، ڈالس، اٹلانٹا، ڈیٹرائٹ، یہ سارا کچھ. اس کے علاوہ برلن اور پیرس جو ہیں اس میں 90% آف لوگ جو ہیں 15 منٹ واک آف ٹو اسینشل سروسز رہتے ہیں. یہ ایک انہوں نے الگوریتھم یوز کیا ہے جس کے اوپر انہوں نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے کمیونٹیز کو ڈیولپ دنیا کے اندر کیا گیا ہے، اور کیا ان کمیونٹیز کے اندر سروسز ہیں کہ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ساری چیزوں کو اپلائی کیا جائے کہ ہر کوئی 15 منٹ میں ہر اسینشل سروس پہ پہنچے، تو فار ایگزامپل اٹلانٹا جو ہے اس کو 80% اپنی جو امینٹیز ہیں ان کو ریلوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کے پاس پہنچانے کے لیے، اور پیرس کے اندر فار ایگزامپل صرف 10% پاپولیشن کو ان کو جو سوری امینٹیز کو لانا پڑے گا اپنی جو مین پاپولیشن ہے اس کے پاس. تو جناب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ جو تھی اسٹڈی تھی، ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی ویلج ٹیسٹ. ویلج ٹیسٹ میں بڑے زبردست مزے کے کھانے ہوتے ہیں، جائیں انجوائے کا مزہ لیں. دو ان کے ریسٹورینٹس ہیں، ایک ہے ڈکسی روڈ پہ مسز ساگا میں، اس کا نمبر ہے 9052323663، اور ایک ہے اوک ول میں ایٹ 2294 لیک شور روڈ ویسٹ، اس کا نمبر ہے 9052262294. اینڈ جناب پائل جیولرز، زبردست قسم کے ڈیزائنز ہیں، ابوظہبی، دبئی، سنگاپور، انڈیا، پاکستان سب سے. اور اگر آپ کے کوئی بھی ایونٹس ہیں، شادی، نکاح، عقیقہ اور کوئی خوشی کی خبر، منگنی، تو پھر آپ کوئی گولڈ کا چیز اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے خرید سکتے ہیں. ایس لیم بھائی کو کال کر لیں، ان کا نمبر ہے 9057907879، ٹھیک ہے جی، ایسے ہے. اچھا جناب، پاکستان کے اندر جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان یو ایس انگیجمنٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھنی چاہیے، اور یہ پاکستان کے اوپر بڑے سارے اکنامک پریشرز ہیں اور ریجنل سیکیورٹی جو ہے اس کے بڑے زیادہ تھریٹس ہیں بیکاز آف کانسٹنٹ کراس بارڈر ٹیررزم فرام افغانستان. یہ ملاقات کر رہے تھے یو ایس سیکرٹری انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پولیٹیکل افیئرز جان باس کے ساتھ فارن آفس اسلام آباد میں. یہ جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے فارن منسٹر بھی ہیں پاکستان کے، और ये मीटिंग जो थी इट वॉज अटेंडेड बाय प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजबेथ होर्स्ट और इसके अंदर इन्होंने कहा जी कि हमको बायलैटरल कोऑपरेशन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इश्यूज एंड काउंटर टेररिज्म और जो है ये रीजनल स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है. अर्लियर दिस मंथ जो जब बलूचिस्तान के अंदर अगस्त 26 को टेररिस्ट अटैक हुए थे जिसमें 50 लोगों की डेथ हुई थी इंक्लूडिंग 14 सिक्योरिटी पर्सनल, तो यूएस ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर इसको कंडेम किया था और यूएस जो व्हाइट हाउस है और जो स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्डेमनेशन शो की थी. बेस्ट जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान का कोऑपरेशन इन असिस्टिंग अफगान्स टू अ पाथवे टू रीसेटल इन यूएस. वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने इसके अंदर बहुत मेजर रोल प्ले किया. अच्छा जी ठीक है, एक दिन तुसी तारीफ कर दे हो, दूसरे दिन तुसी बैशिंग शुरू कर देते हो पाकिस्तान की. व्हाट इज दिस अंकल सैम. तो बहरल जी रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं एलेक्जे ओवरचुक, इनफैक्ट दिस इज अ बिग 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 न्यूज, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एलेक्जे ओवरचुक जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं कल दो दिन के दौरे के ऊपर और अपने साथ बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं जो मुलाकातें करेंगे प्रेसिडेंट जरदारी और प्राइम मिनिस्टर के साथ और इसहाक डार साहब के साथ भी. ओवरचुक जो हैं वो कह रहे हैं कि जी दोनों कंट्रीज के बीच में अब जो है कोलैबोरेशन होना चाहिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांजैक्शंस पे इन फ्यूचर. रशिया जो है वो अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल्स एट मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी उन्होंने कहा जी कि एलएनजी का एक्सपोर्ट टर्मिनल जो है इनके मुल्क में रेडी हो जाएगा बाय 2026 और वो गैस की ट्रेड कर सकेंगे पाकिस्तान के साथ. और क्योंकि इनका जो पाकिस्तान का जो ये जो इनका जो क्लॉजेस थे कतर के साथ जो है फॉर एग्जांपल अंडर टू लॉन्ग टर्म डील्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स वो जो हैं वो खत्म हो जाएंगे बाय 2026. तो जाहिर है कि गैस की तो और ज्यादा बढ़ेगी मांग पाकिस्तान के अंदर क्योंकि 2026 तक तो और लाखों बच्चा जो है वो आ जाएगा और जो है लोगों को जरूरतें बढ़ेंगी. तो इसके लिए वो कहते हैं जी कि हम रशिया जो कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ एक बड़ी अच्छे रेट्स के ऊपर ये एक डील कर सकते हैं. इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, अगर ऐसा होएगा तो जाहिर है जनाब जॉब्स भी आएंगी और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होएगा और जो गैस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म होंगी. ये जो जुडिशियल पैकेज आ रहा है जी कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल पैकेज के ऊपर आज इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा जो है वो झाड़ा है गवर्नमेंट को और उन्होंने कहा जी कि रूलिंग कोलिशन जो है वो पूरी की पूरी कोशिश कर रही है इन अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्योंकि वो मुझे जेल में रखना चाहते हैं. वो कहते हैं जी कि रूलर्स जो है ये डर गए हैं सुप्रीम कोर्ट से और इसलिए वो जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाना चाहते हैं. वो कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अब जो है इसलिए इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो रही है कि वो अपना इलेक्शन फ्रॉड जो है वो छुपाना चाहते हैं. आपको पता ही है कि पीटीआई ने फरवरी 8 के जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उसको कहा था ये रिग्ड है क्योंकि खान साहब ने भी कहा था कि हमने बहुत मेजर स्केल पे विक्ट्री ली थी लेकिन हमारे हाथों से ये विक्ट्री इन्होंने खींची है. और पीटीआई ने भी कहा था कि ये सारे का सारा ड्रामा जो है फॉर्म 45 और 47 का है. इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये अब डर रहे हैं कि हर कुछ जो है जो इन्होंने फ्रॉड किया है फरवरी 8 का वो रिवर्स ना हो जाए और ये लोग एक्सपोज ना हो जाएं. उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त मीडिया ने पूछा कि आपकी फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या है तो उन्होंने कहा जी कि मेरी पार्टी बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगी और गवर्नमेंट ये जो कोई भी मूव्स ला रही है इसके ऊपर डेफिनेटली बड़ा स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है वो दिखाएगी. और जनाब हिंदुस्तान के अंदर भी चूंकि आने वाले हैं दो इलेक्शंस, एक हरियाणा में और एक जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पे भी सियासत बहुत भड़क गई है. बीजेपी के जो लीडर हैं रवनीत सिंह बिट्टू उन्होंने तो आज राहुल गांधी को कहा कि ही इज टेररिस्ट नंबर वन. व्हाट इज दिस बिट्टू साहब, व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो राहुल गांधी मासूम आदमी के खिलाफ तुम हैं. कह रहे हैं ही इज टेररिस्ट नंबर वन फॉर हिज रिमार्क्स ऑन सिख कम्युनिटी. वो कहते हैं जी गांधी जी तो हिंदुस्तानी ही नहीं है. अरे रे 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 बिट्टू जी क्या कर रहे हो आप, क्या कह रहे हो, ऐसे ये तो दुख देने वाली बातें कर रहे हो हैं. कह रहे हैं राहुल गांधी तो इंडियन ही नहीं है, ये तो इंडिया के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं इसीलिए वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं. सारा वक्त ये मुल्क से बाहर रहते हैं और इनका हिंदुस्तान के साथ कुछ प्यार व्यार नहीं है. तो भाई जी फिर मोदी जी भी बहुत चक्कर लगाते थे फिर उनके पते हैं आपका क्या ख्याल है, तो ऐसे गंदी बातें नहीं करते. अच्छा जी तो उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और जो पीपल जो लोग जो कि मोस्ट वांटेड और सेपरेटिस्ट हैं और जो कि बनाते हैं बॉम्ब्स और गन्स और शेल्स वो इनको जो है अप्रिशिएट करते हैं ये जो भी कोई बात करते हैं. और ये कहते हैं जी कि ये ہندوستان کے جو اینمیز ہیں جو کہ ہندوستان کے طیارے اور ٹرینیں اور روڈ جو ہیں وہ بلو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں گاندھی جی کو. گاندھی جی جو ہیں وہ ایک ریلیجن کا کارڈ پلے کر رہے ہیں اور وہ جو ہیں ٹیررسٹ لائک گرپتون سنگھ پنو ٹائپ کی لینگویج جو ہے وہ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ سکھ اپنا ٹربن اور کڑا ہندوستان کے اندر نہیں پہن سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. گاندھی فیملی جو ہے اس کی یہ کانسپریسی ہے اور اس کانسپریسی کے انڈر اس سے پہلے بھی انہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کو سٹریٹس کے اوپر ریپ کیا اور گولڈن ٹیمپل جو ہمارا سیکرٹ پلیس ہے اس کے اوپر انہوں نے بلٹس چلائے, ہزاروں انسنٹ لوگوں کو کانگریس نے مارا اور اب یہ سکھوں کو پھر سے ٹیز کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گاندھی جی کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ کانگریس بھڑک گئی. کانگریس کے اسپوکس پرسن کی جو اسپوکس پرسن ہے سپریا شری ناٹے, انہوں نے ایکس کے اوپر کہا جی کہ یہ جو بٹو ہے یہ چیز کیا ہے, اس کا تو سارے کا سارا پولیٹیکل کریئر جو ہے راہل گاندھی کی گودی میں بیٹھ کے جو ہے وہ گزرا ہے اور اب یہ اس طرح کے چیپ کامنٹس دے رہا ہے کیونکہ یہ پاور کیا اس کو لالچ آ گیا ہے. بٹو جو ہے وہ اچھا ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ اب اس کا بولنا نہیں چاہیے اس کو, لیکن یہ انہوں نے کہا ہے سپریا جی, لیکن چلو ہم بول دیتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بٹو ایسے بول رہا ہے کہ جس میں کہ لوگوں کے سامنے اس کی ڈرٹی ریالٹی جو ہے وہ آ جائے گی. اور کہتے ہیں ہمارے جو اسکرپچرز ہیں جو ہمارے یعنی کہ جو شبد لکھے ہوئے ہیں ہماری مقدس کتابوں میں اس میں اس طرح کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ گھاس کے سنیکس ہیں یہ, دے آر سنیکس ان دا گراس. کانگریس کے لیڈر سندیپ دکشت جو ہیں انہوں نے بھی کہا جی کہ مجھے ایسے لوگوں کے اوپر ترس آتا ہے. بٹو نے اپنا کریئر جو ہے کانگریس میں شروع کیا تھا اور اس وقت وہاں پہ کانگریس میں بھی یہ بڑا جو ہے وہ میس کریٹ کرتا تھا اور اس وقت تو 24 گھنٹے راہل گاندھی جی کی تعریفیں کرتا رہتا تھا اور اب جب چھوڑ کے گیا ہے اور بی جے پی کو شو کیا ہے تو جوائن کیا تو ان کو اپنی لائلٹی شو کرنے کے لیے اس طرح کی گندی باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے. بٹو جی گندی باتیں نہیں کرنی. اچھا جناب, آزاد جموں اور کشمیر میں ہونے والے ہیں الیکشنز, اور نہیں سوری انڈین آکیوپائڈ جموں اور کشمیر میں ہونے والے ہیں الیکشنز, اور ان الیکشنز میں جو کانگریس ہے اس نے کہا ہے جی کہ وعدہ کیا ہے کشمیریوں سے کہ اگر کانگریس ویلی میں جیتی تو ہم جو یہ آرٹیکل 370 ریووک کیا تھا اس کو ہم واپس لے کر آئیں گے اور آپ کو اسٹیٹ ہڈ دیں گے. یہاں پہ جو الیکشنز ہیں کل سے شروع ہونے والے ہیں 3 فیزز میں, اور یہ پہلی دفعہ ہے 10 سال میں کہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے اندر جو ہیں الیکشنز ہونے والے ہیں. اور جب سے آرٹیکل 370 ختم کیا ہے تو اور بی جے پی نے اپنا ڈائریکٹ رول امپوز کیا تھا ان 2019, اس کے بعد سے بھی یہ پہلا الیکشن ہے. اس میں 8.7 ملین جو ہیں ایلیجیبل ووٹرز ہیں, 500,000 انڈین ٹروپس ابھی بھی وہاں پہ ڈپلوئڈ ہیں. جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے اسپوکس پرسن پون کھیرا نے کہا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے اس نے آرٹیکل 370 ختم کیا اور یہ جو تھی جو اسٹیٹ تھی اس کو یونین ٹیریٹری کے درجے کے اوپر لے کر آگے, اور کانگریس جو ہے وہ اپنی الائنس جو ہے اب نیشنل کانفرنس کے ساتھ بنا رہی ہے. کھیرا صاحب نے ایکیوز کیا مودی جی کو کہ ان کی جو یہ بہت ہی ٹرینیکل پالیسیز ہیں جس میں کہ آرٹیکل کو انہوں نے ریووک کیا تھا یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہندوستان میں آ رہی ہیں, جیسے کہ دلی کے اندر جو دلی کی منسٹر ہیں آتشی مرلینا سنگھ وہ اب دلی کی چیف منسٹر کا فیس بنیں گی. اروند کیجریوال نے آج یہ اناؤنسمنٹ پارٹی کی میٹنگ میں دلی میں کی. تو جناب کافی ہلچل چل رہا ہے ہندوستان میں بھی. اس کے ساتھ ساتھ یونین ہوم منسٹر امت شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا راہل گاندھی جی کو مشین آف لائز, ہے جی امت شاہ نے کہا گاندھی جی کو راہل گاندھی کو, اور انہوں نے کہا جی یہ کیسا لینگویج یوز کرتے ہیں, اور ایک پبلک ریلی سے وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے چیلنج کیا گاندھی جی کو. انہوں نے کہا تم اپنا کلیریفائی کرو پوزیشن کہ جب سے ہم نے آرٹیکل 370 کشمیر سے ہٹایا ہے تو کیا یہ اچھا ڈیسیجن تھا یا کہ بیڈ ڈیسیجن تھا, کیونکہ ہم نے ابھی تک سنا نہیں ہے تم سے. انہوں نے کہا جی کہ پارلیمنٹ کے اندر گاندھی جی ایس پی کے جو ایم پیز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ ایودھیا سے جیتے, ہار جیت تو چلتی رہتی ہے لیکن جو مین پرپس ہے ایودھیا کا وہ انہوں نے ڈیفیٹ کیا, ایسا انہوں نے کچھ کہا. مودی جی جو ہیں انہوں نے رام للہ کیا گرینڈ ٹیمپل کے اندر اور یہ جو ہے ہضم نہیں ہوا گاندھی جی سے. وہ کہتے ہیں جی پچھلے 40 سال سے سولجرز جو تھے وہ ون رینک ون پینشن مانگ رہے تھے جو کہ کانگریس نے کبھی نہیں کیا, اور یہ جو ابھی ہریانہ کی سٹیٹ میں ہدا صاحب رول کر رہے ہیں تو یہاں سے تو سب سے زیادہ سولجرز انڈین آرمی میں جاتے ہیں تو کیوں انہوں نے یہ رولز امپلیمنٹ نہیں کیے. لیکن جب مودی جی کو الیکٹ کیا لوگوں نے 2014 میں तो उन्होंने 2015 में ये तमाम चीजें शुरू की। इसके अलावा वो कहते हैं जी गांधी जी अमित शाह जी ने कहा कि वो अग्निवीर स्कीम के भी खिलाफ हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो क्यों लोगों के बीच में झूठ फैला रहे हैं, उनको क्यों नहीं ट्रस्ट करने दे रहे हैं बीजेपी के ऊपर। जब मैंने कोई वादा किया तो मैंने डिलीवर किया, मोदी जी ने वादा किया तो मोदी जी ने किया, और अग्निवीर जो है वो बहुत सारे जो लोग थे वो जॉबलेस थे और बीजेपी ने गारंटी किया कि उनको जॉब मिले पिछले 10 साल में। वो कहते हैं जी हिंदुस्तान का अमित शाह साहब के कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हमने छोड़ा नहीं है जहां पे कि क्वालिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स नहीं बनाए, और हम अब जब जीतेंगे यहां पे तो हर जगह के ऊपर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे। हुडा साहब का जो रूल है उसके अंदर इन्होंने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी फार्मर्स के लिए वो क्यों नहीं ली, सिर्फ ये एमएसपी जो है 4 क्रॉप्स को देते थे, फिर नायाब सिंह जी जो आए तो फिर उन्होंने 24 क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी देनी शुरू की। वो कहते हैं जी भिवाणी के अंदर सिर्फ जो बीजेपी है उसने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने 297 करोड़ जो है वो 1.4 मिलियन से ज्यादा फार्मर्स जो है उनके बैंक अकाउंट्स में भेजे हैं, जबकि हुडा साहब के टाइम में हरियाणा को जो है सिर्फ 41,000 करोड़ जो था उन्होंने यूज किया था, जबकि बीजेपी जो है वो अभी तक 10 साल में 1.43 मिलियन करोड़ जो है वो दे चुकी है। तो भाईजान आज उन्होंने अपनी सारी अच्छाइयां गिनवाई की बीजेपी ने क्या किया है। और जनाब हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था फिल्म आने वाली है जिगरा आलिया भट्ट की। अब आलिया भट्ट ने एक और टीजर, पहले तो एक टीजर किया था, आज एक दूसरा टीजर इन्होंने ड्रॉप किया है जिसमें कि देखा जा रहा है कि ये सॉन्ग चल कुड़िए गा रहे हैं इनके साथ नन अदर देन दिलजीत दोसांझ, जो कि इन्होंने ये शेयर किया अपने इंस्टा के ऊपर। दिलजीत जो है व्हाइट आउटफिट में बैठे हुए और गा रहे हैं चल कुड़िए उठ कुड़िए, और आलिया जो है काले कपड़ों में है। इसमें इसने गाने ने बहुत एक्साइटमेंट फैंस के बीच में दी है, कुछ तो इसको सुपर हिट ही बोल रहे हैं, और ये दोनों कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और ये गा रहे हैं। ये इनका दूसरा कोलैबोरेशन है, इससे पहले इनका जो कोलैबोरेशन था वो इनकी जो एक गाना आया था एक कुड़ी फ्रॉम फिल्म उड़ता पंजाब, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया था, खास तौर पे जो आलिया भट्ट के येलो शूज हैं उसकी लोगों ने बड़ी तारीफ की फोटो के अंदर है जी ऐसे। और आमिर साहब आप जैसे गरीबों के लिए यह सबसे बड़ी खबर, सलमान खान साहब देखेंगे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉचेस पहने हुए, इसके अंदर डायमंड ही डायमंड लगे हुए हैं, ये जो है देखेंगे फाउंडर ऑफ जेकब एंड को, जेकब एंड को की इन्होंने ये घड़ी पहनी हुई है जिसको के जेकब एंड को के फाउंडर ने अपने इंस्टा के ऊपर शेयर किया, और जिसमें के सल्लू भाई इनको हक कर रहे हैं जेकब अरबों को, और अरबों ने कहा वैसे तो मैं अपना ये जो बिलियनेयर घड़ी है इसको किसी को हाथ नहीं लगाने देता हूं, लेकिन आई हैव मेड एन एक्सेप्शन फॉर सल्लू भाई। अरबों जो हैं उन्होंने अपना ये बिलियनेयर 3 वॉच सल्लू भाई को दी है, विच हैज 714 डायमंड्स, और ये घड़ी जो है उसके सिर्फ 18 पीसेस बनाए जाते हैं बिलियनेयर 3 के। इसका जो इनर रिंग है उसके अंदर 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड वॉच के अंदर जो है वो 152 एमरल्ड कट डायमंड्स हैं, ब्रेसलेट के ऊपर 504 व्हाइट एमरल्ड कट डायमंड्स लगे हुए हैं, इसके मूवमेंट ब्रिज के ऊपर 57 बगे कट डायमंड्स लगे हुए हैं। आमिर साहब इस घड़ी की क्या कीमत है आप बताओ जरा, सोचो जरा कितनी है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कितनी है, कितनी है, 41 करोड़ की है ये घड़ी
बस।
चेना तो बनवा लेंगे, 41 करोड़ की ये घड़ी है जी,
इंडियन रुपीज के पाकिस्तान,
इंडियन रुपीज पाईजान क्या हो गया, क्या हो गया, इंडियन रुपीज 41 करोड़ जी बहुत सस्ती है, चेना जिंदाबाद, हम उनको कहेंगे अपने प्रावों को हमें बना दो। अच्छा जनाब अर्चना पूरन सिंह जो आजकल प्रमोट कर रही है सेकेंड सीजन ऑफ द ग्रेट इंडियन कपिल शो, तो इसके अंदर जो इंटरव्यूअर था उनसे उन्होंने पूछा, इनके साथ बाकी की भी कास्ट थी, सुनील ग्रोवर, कीकू शर्मा, शारदा और राजीव ठाकुर, तो उनके सामने इन्होंने पूछा जी कि आपको कितना मिलता है, तो इन्होंने कहा जी कि मुझे जो है इन लड़कों से बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर खुद ही हंसने लगी हूं, कहती हैं जी ये काम भी बहुत हार्ड करते हैं, दे रियली वर्क हार्ड, मैं तो कुछ ऐसा करती नहीं हूं तो मैं तो बस हंसती हूं। तो उसके ऊपर जो है फिर वो जो सुनील है, सुनील ग्रोवर, उसने कहा कि इनको हंसने के तो पैसे मिलते हैं, तो फिर इंटरव्यू ने पूछा किसी ने कभी आपको कहा कि तुम हंसो नहीं इतना ज्यादा, तो अर्चना पूरन सिंह ने कहा वो लोग आज तक धरती पर नहीं चलते होंगे जिसने मुझे बोल दिया कि आप कम हंसो, ये उन्होंने कहा, फिर वो खुद ही हंसना लग गई। उन्होंने कहा, जी मैं आई एम वेरी हैप्पी विद वट एवर आई एम गेटिंग एंड द होल यू नो शो एंड एवरीथिंग। और जनाब लॉरा वुल्फ-डॉर्ट की जो साउथ अफ्रीकन विमेन्स क्रिकेट टीम थी, उसने पाकिस्तान को 10 विकेटों से हराया फर्स्ट T20 में, जो कि हो रहा है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। दे रिस्ट्रिक्टेड पाकिस्तान टू 122 फॉर 5 इन 20 ओवर्स और इन्होंने पाकिस्तान को